بسم الله الرحمن الرحيم. من أولياءه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے اپنی ہر مخلوق میں ایک خاصیت پیدا کی ہے، جیسے انسان کو ناطق بنایا. ناطق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو جو اس کے دل میں ہے زبان سے بول کر دوسرے کو سمجھا ہے. ہر انسان ناطق ہے. اللہ تعالی نے اس کو یہ قوت عطا فرمائی کہ وہ جو اس کے دل میں آتا ہے وہ اپنی زبان سے الفاظ کے ذریعے دوسروں کے سامنے بولتا ہے. نطق کہتے ہیں بولنے کو، اور بول کر دوسرے کو سمجھا دیتا ہے. یہ خاصیت بھینس کے اندر نہیں، گائے میں نہیں، یہ خاصیت کسی پرندے میں نہیں. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناطق بنایا ہے کہ اپنے دل کی بات لفظوں کے ذریعے بول کر دوسروں کو سمجھا، اور جب دوسرا بولے تو یہ اس کو سمجھ لے. یہ ہے ناطق. اسی طرح گھوڑے کو بھی اللہ تعالیٰ نے آواز دی ہے، اس کو حیوان ساحل ہے. ساحل کا مطلب یہ ہے ہل نہیں آنا. اس کی آواز ناطق نہیں ہے بلکہ گھوڑے کی ایک مخصوص آواز ہے. جب وہ ہل جناتا ہے تو سمجھ میں بات آتی ہے یہ گھوڑا ہے. گدھے کو اللہ تعالیٰ نے ناطق بنایا. ناطق کے معنی بیچوں بیچوں کا، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے. گھوڑا بیچوں بیچوں نہیں بول رہا، اور گدھا جناتا نہیں. انسان ناطق ہے. اس تھوڑے سے وقت میں دو تین مثالیں دینے منطق کی. آپ منطقی نہیں ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، مگر سمجھ گئے کہ انسان کی خاصیت ہے ناطق ہونا، گھوڑے کی خاصیت ہے ہلجلانا، اور گدھے کی خاصیت ہے بیچوں بیچوں کرنا. ایسے ہی ہر پرندے کی اللہ نے خاص بولی بنا دی، اور وہ اپنی بولی بھی سے پہچانا جاتا. دیوار کے نیچے اگر دو آدمی بات کر رہے ہیں آپ ان کی گفتگو دیوار کے پیچھے سن رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو دیکھ نہیں رہے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھیں گے؟ گدھا بول رہا ہے، گھوڑا بول رہا ہے. آپ کہیں گے تو آدمی بول رہے ہیں. ان کی بولی اس کے آدمی ہونے کی نشانی ہے. اور اسی دیوار کے پیچھے اگر ہلانے کی آواز آئے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کیا چیز ہے، اور اگر آپ سمجھ جائیں گے کہ گھوڑا ہے، अगर बीजों बीजों की आवाज आए देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि गड्ढा हो रहा है। इतनी बात तो अच्छी तरह समझ गए होंगे, मंदिर नहीं भी पड़ा है तो इस मंदिर की बात को आप जरूर समझ गए होंगे। तो हर जानवर हर चीज की एक खासियत और निशानी है जिससे उसे पहचाना जाए। अब आइए अल्लाह वाले की क्या निशानी, हर एक को अल्लाह वाला नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला ने वलियों की निशानी बताई है इन औलिया वली की निशानी है वो शरीयत का पाबंद और मुस्तकी पर
निशान।
घोड़े को जो अल्लाह ने उसके लिए निशानी बताई है उसकी आवाज से आप समझते थे, उसको गधा नहीं समझते, गधे को घोड़ा नहीं समझते। ऐसी गलती अगर आप करेंगे तो पागल कर देना। आदमी बोलता है तो उसको गधा आप नहीं समझते, इंसान ही समझते। चाहे वो गधे जैसी बात करे लेकिन इंसान नहीं समझते। जब आप इतने अकलमंद हैं और जानते हैं तो अल्लाह ताला ने इंसान को नाफिर, घोड़े को साहिर और गधे को नाहिर बनाया है। वही अल्लाह जिसने सारी कायनात को पैदा किया है वही इंसान फरमाता है कि मैंने जिसको वली बनाया है वो वली शरीयत के खिलाफ नहीं बोल रहा। वो वली जब बोलता है तो मुस्तफा की बात बोलता है। वली जब अमल करता है तो शरीयत के मुताबिक अमल करता है। वली की पहचान तक्वा है, शरीयत की पाबंदी है। उसी को कुरान फरमाता इन औलिया वो इज्जत को तकू, वही जो होगा वो मुत्तकी ही हो। इसलिए इन औलिया वो इन नाफिया के बाद इल्ला फरमाया है ताकि हज़्र हो जाए। इधर उधर अलम गलम बात नहीं है, ये कामन गुफ्तगू नहीं है, बल्कि हज़्र के साथ अल्लाह फरमाता है इन औलिया वो इज्जत मुत्तकू, वली जो होगा वो मुत्तकी ही होगा। जैसे आदमी को आप गुफ्तगू करते सुन रहे हैं तो आप कहेंगे ये जो बोलने वाला है इंसान ही है, मतलब है ये कोई गधा और घोड़ा नहीं है। हसर कर दिया क्योंकि ये उसकी खासियत है, आपने फिक्स कर दिया। इसी तरह है दोस्तों, अल्लाह ताला हर वली के लिए ये बात फिक्स करता है और उसे खास करके बताता है पहले को गुमराहियों में मत पड़ना। इन औलिया को वो इज्जत और कबूल, वली जो होगा वो मुत्तकी ही होगा। तो इससे पता चला जो मुत्तकी नहीं है चाहे वो लाल कपड़ा पहने या पीला कपड़ा पहने या लंबे लंबे बाल रखे या बाबा बंदर के दो अंगूठियां अपने दस उंगलियों में 15 अंगूठी पहने, उंगली तो 10 है लेकिन 15 मैंने गिना है अंगूठियां होती है। ये उंगली भी बना मानती है कि किसकी उंगली में बन गई, ये गना उसको कस के रखता है कि हाथ मुड़ भी नहीं सकता। एक मुझे जामनगर में बाबा मिला और हजूर मुफ्ती आजम ने तस्वीर लाए, उस वक्त मिलने के लिए आया। मैंने कहा बाबा कहाँ जाओगे, बोले हजरत आला हजरत आए मिलने जा रहा हूँ। मैंने कहा ये तो आपकी जेवरात है, वो देख कर बहुत नाराज होंगे, आपके लिए क्यों पहन रहा है। तो जवाब देता है मेरी नीयत जीनत और बनने समझने की नहीं है, मैंने इसे पहनना चाहती हूँ। बोले जहाँ बहादुरी कुछ गुफ्तगू करके और मुझे बहकाना चाहता तो सब अंगूठी के साथ एक मरतबा मारता भोगड़ा बताओ इस नीयत को कौन से निकल सकता। समझे, ये बाबा लोगों की बात बता रहे, शरीयत नहीं देखते। बहादुरी का ढोकड़ा उठ जाए लेकिन तुम जहन्नम में चले जाओ उसकी परवाह नहीं है। तकवा जिसको कहते हैं खुद सब लोग दूसरों को सफल,
ये मस्जिदें, ये उलमा की सोबतें इसीलिए है
हमारे दिल से मिले, सही रास्ता मिले। जब आप किसी जड़ी बूटी को इस्तेमाल करना चाहें तो जंगल में जाकर के कोई भी पत्ती तोड़ कर खा लें, कोई भी जड़ी निकल जाए। आप समझते हैं मैं दवा खा रहा हूँ, वो शहद भी हो सकती है। आपने वो जड़ी बूटी खाया जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है, तो ये आपका वजूद कब्रिस्तान पहुंच जाएगा। इसलिए किसी हकीम की जरूरत पड़ती है जिसने बरसों दवाओं पर रिसर्च किया है, जड़ी बूटियां जिसके मदद में दवाओं का काम करती है, ऐसे हकीम की तरफ रुजू किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं लेकुल लेकिन दवा, हर बीमारी के लिए अल्लाह ने दवा पैदा की, लेकिन दवा को पहचान दे तो नहीं पहचान सकते, उसके लिए हकीम की जरूरत है। अल्लाह ताला ने हर मरीज को हमारी रूहानी हमारे रूहानी इलाज के लिए दवा अदा फरमाई है। रूहानी इलाज किस तरह से होगा, जबकि इन्हें पहचान लो कि ये अल्लाह का है, वो बंदा है, उसकी खिदमत में सिर्फ बैठो तो दिल की सारी गंदगी दूर हो जाएगी, अंधा दिल देखने लगेगा, ईमान तुम्हारा परफेक्ट हो जाएगा, और सिर्फ ये आंखों से तुम नहीं देखोगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन तबू बना सकल मोमिन इन नबू जंजो जरूरी ईमान, और एक हदीस में है जरूरी ईमान, मोमिन ईमान की नजर से देखता है, और दूसरी हदीस में है कि मोमिन देखता है तो अल्लाह के नूर से देखता है। आंखों का नूर तुम्हारे बदन को देखने की सलाहियत रखता है, ये लंबा है, पीला है, काला है, गोरा है, मोटा है, पगला है, ये आंख की रोशनी तुमको बताती है, लेकिन दिल में वहाबी है, पेशुनी है, मक्कार है या वफाशहार है। मोमिन के पास बैठते हो तो अल्लाह के रसूल फरमाते संभल कर बैठना। कौन सा मोमिन? दो निकाह नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं, वो मोमिन जिसकी पूरी जिंदगी सकवा नहीं गुजरी है, जो अल्लाह के रसूल की शरीयत पर अमल करता है। रसूल फरमाते हैं उसके पास बैठो तो बहुत केयरफुल बैठो, होशियारी के साथ बैठो, इसलिए कि अल्लाह वालों की जो सखावत और अब्र की तेजी होती है, समझ बूझ का जो उनका अंदाज होता है वो बड़ा तेज होता है। अब्र जहाँ काम नहीं करती है वहाँ अल्लाह वालों का ईमानी नजर काम करती है। वो सब अंदर देख लेते हैं, एक्सरे मशीन में भी लाइट है और तुम्हारे ट्यूबलाइट में भी लाइट है, लेकिन ये लाइट ऊपर जाहिर करती है, और एक्सरे मशीन तुम्हारे दिल में टीबी है या कैंसर है उसको ऊपर खींच कर लाती है। हमारे आंख ऊपर का एक्सरे करती है, और तो आजा की आंख दिल का एक्सरे दिल में क्या सुधार है। एक था यहूदी सुनार वहां से, ये बड़ी मक्कार कौम होती है, मुसलमानों का लिबास पहनकर आलिमाना शान के साथ वो बहुत से मौलाना लोगों के पास गया, कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि मोमिन अल्लाह के नूर से या ईमान के नूर से देखा करता है, इस हदीस का क्या मतलब है। बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन उसकी समझ में बात नहीं आई। आखिर वह हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में पहुंचे और कहने लगा इस हदीस का मुझे मतलब समझना है कि मोमिन की फरासत से होशियार रहना, वो अल्लाह के नूर से देखता है, ईमान के नूर से देखता है, इसका मतलब क्या है। तो आप उसके बारे में मतलब मैं आगे बताऊंगा, ये जो तू आलिमाना लिबास पहनकर आया है और एक यहूदियत की अलामत चमेरों और सुनार अंदर लगी हुई है, पहले उसको उतार और फिर उससे
मैंने
अब मतलब समझ में आया, जो सबसे मैंने अपने मजहब की निशानी आलिमाना लिबास में छुपा कर रखी थी, आपने पहली नजर में अंतर देख लिया कि मैं क्रिसमस आता हूँ, कदमों पर गिर गया, यकीनन आपके रसूल ने सही फरमाया है आप ही लोग सच्चे होंगे। अंदर से देखता है, हम समझते हैं हम फला वली के मजार पर गए हैं और कुछ भी दिल में सोच रहे हैं, वो निधि इससे बाखबर है, बाखबर होते हैं, अपने दिल को संभाल संभाल कर चलो। अगर वहाँ तुम्हारा दिल गड़बड़ होता है और वहाँ जाकर कुछ भी उनके उससे सीधे ख्याल आते हैं, सारी दुआएं बेअसर हो जाती हैं, और फिर संभाल कर चलोगे तो हर दुआ में अल्लाह तुम्हारे लिए कबूलियत का असर पैदा करेगा। अल्लाह के जो गली होते हैं उनका मकाम बहुत ऊंचा होता है और उन वर्गियों में ऊंचे से ऊंचे हमारे पीराने पीर हीरे तस्वीर महबूबे सुहानी गौसे सरदानी शायर अब्दुल कादिर जिलानी शहबाजे लामकानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। हमारे मुल्क में वर्गियों के सरदार ख्वाजा ख्वाजा मुहीबुल हक वदीन सैयदना ख्वाजा हसन संगरी सुख अजमेरी अल मशहूर बेगरी नवास, ये हमारे मुल्क में बलियों के सरदार हैं। इनके बाद बारगाह में जाओ तो दिल संभाल कर जाना, जैसे अपने उस्ताद के सामने जबान संभाल कर जाते हो, बलियों के पास जाओ तो दिल संभाल कर जाना। ये बड़े खुशी मकाम के लोग हैं, अगर दिल संभाल कर गए हो तो इंशाअल्लाह तुम्हारी दुआओं में वहाँ असर पैदा करेगा परवरदिगार आलम। और वली तलाश करना हो तो एक ही निहार है, सैयद औलिया औलुल मुत्तकून, अल्लाह का वली जो होता है वो तकवे वाला होता है, शरीयत वाला होता है। इसी को है मेरे दोस्तों, हमेशा मेयार बनाओ, कसौटी बनाओ, पढ़ने का आला बनाओ, और इधर उधर जहाँ शरीयत के खिलाफ हो और चमत्कार पर चमत्कार दिखा रहा है, खुदा के कसम बड़ी बदमाना ईमान तुम्हारा तबाह हो जाए। सिर्फ ईमान की हिफाजत के लिए मैंने अपना कर्ज दिल बयान किया है, जब किसी को बड़ी मानो तो किसी अगले बदले को मत मानो, देखो कि मुंतकी और परहेजगार कौन है। कहा कोई पागल, हर पागल मजदूर नहीं होता है और हर मजदूर पागल नहीं होता, उसके मकाम हैं, जिसको देख लिया तू क्या बोल रहा है, तू उधार कर रहा है, इसको पत्थर मार रहा है, उसको गाली दे रहा है, चाय पीने के लिए भेज दिया, बोले मामा बहुत पहुंचेगा। सुबह मान लो आला हजरत का फैसला है कि मजदूर को पहचानना आसान नहीं है, मजदूर को पहचानना आसान नहीं है, अल्लाह को पहचानना आसान है, मजदूर को पहचानना आसान नहीं है। इसलिए जमीन से दोस्ती अच्छी नहीं थी, दुश्मनी अच्छी आला हजरत
बेशक।
इनसे दोस्ती भी मत करो, दुश्मनी भी मत करो, हो सकता है दुश्मनी करो और यही पागल मजबूत हो जाए तो ईमान को खतरा हो जाएगा, और हर पागल को तुम मुआवजी समझकर दोस्ती कर लो तो ये होगा कि जो अल्लाह का दोस्त नहीं है तुमने उसको दोस्त बना दिया। इसलिए आला हजरत का अपना फैसला ये है कि न इनको छेड़ो और न इनसे जाकर के बलायत का जज्बा इनके दिलों में देख करके और उन्हें तस्वीर कर लो। अगर किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात हो गई, तो ये बनावट नहीं है, बनावट सिर्फ अल्लाह परमात्मा के शरीर की बात है। अल्लाह ताला हम सबको वलियों की कदर करने और उनके साथ अपनी मोहब्बत का रिश्ता मजबूत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहा इल्लल्लाह।